श्री राधा गिरिधरी भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की, श्रील प्रभुपाद की। ब्रह्मा भवच तत्र एत्य ब्रह्मा भवच तत्र एत्य मुनिभिः नारद आदिभिः देवते स्व अनुचरे देवते स अनुचरे साकं गोभिः कृष्णाम् एडयन् साकं गीर्भिर्वृष्णाणाम् एडयन् ब्रह्मा भवच तत्र एत्य मुनिभिः नारद आदिभिः देवेशानुचरे साकं वृष्णाम् एडयन् ब्रह्मा भवच तत्र एत्य मुनिभिः नारद आदिभिः देवते स्व अनुचरे साकं वृष्णाम् एडयन्
ब्रह्मा भवच तत्र एत्य
तत्रेत्य मुनिभि नारदादिभि देशसाकं वृष्णामेळयन् मतजी ब्रह्मा भव च तत्र एत्य नारदादि देवेशानुचरे साकं वृष्णामेळयन् ब्रह्मा भव च तत्र एत्य मुनिभि नारदादिभि देवेशानुचरे साकं वृष्णामेळयन्। इस श्लोकों के शब्दार्थ ऐसे हैं, मेरे पीछे बोलिए। ब्रह्मा चतुर्मुख देवता भवच तथा शिव तत्र वहाँ एत्य आकर मुनि भी मुनियों नारद आदि भी नारद इत्यादि के साथ देवते तथा इंद्र चंद्र वरुण आदि देवताओं के साथ सो अनुचरे अपने अपने अनुयायियों के साथ साकम साथ गे भी अपनी स्तुतियों से वृषाणम किसी को भी वर देने वाले भगवान एडयन प्रसन्न किया। ट्रांसलेशन एंड पर्पट ही डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की ट्रांसलेशन। भगवान ब्रह्मा तथा भगवान शिव जी नारद देवल तथा व्यास जैसे महामुनियों एवं इंद्र चंद्र तथा वरुण जैसे देवताओं के साथ अदृश्य रूप में देवकी के कक्ष में पहुँचे, जहाँ सबों ने मिलकर वरदायक भगवान को प्रसन्न करने के लिए सादर स्तुतियाँ की। तात्पर्य दो मूर्त स्वर्गलोक स्मिन देव आसुर एवच पद्म पुराण में बताया गया। मनुष्य दो प्रकार के होते हैं, देव तथा असुर, और इन दोनों में बड़ा भारी अंतर है। असुर होने के कारण कंस लगातार भगवान या उनकी माता देवकी को मार डालने के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाता रहता था। इस तरह वो भी कृष्ण भावना भावित था, किंतु भक्तगण अनुकूल कृष्ण भावना भावित होते हैं। विष्णु भक्त स्मृत देवे ब्रह्मा इतने शक्तिशाली हैं कि उन्हें संपूर्ण ब्रह्मांड के सृजन का कार्य दिया गया है, फिर भी वो भगवान का स्वागत करने स्वयं आए। भव अर्थात शिव भगवान के नाम का शिव भगवान के नाम का कीर्तन करके सदा हर्षित होते हैं। और नारद को तो कहना ही क्या, नारद मुनि बजाए बिना राधिका रमण नामे। नारद मुनि सदैव भगवान का गुणगान करते रहते हैं और उनका कार्य है पूरे विश्व का भ्रमण करके भक्त की खोज करना या किसी को भक्त बनाना। नारद की कृपा से शिकारी भी भक्त बन गया। श्रील सनातन गोस्वामी ने तोषणी टीका में लिखा है कि नारद आदि भी शब्द का अर्थ है कि नारद तथा देवताओं के साथ सनक तथा सनातन मुनि भी थे, और वो सभी अपनी बधाई देने तथा भगवान का स्वागत करने आए थे। यदि भी कंस देवकी को मारने की योजना बना रहा था, किंतु वो भी भगवान के आगमन की अपेक्षा भगवान के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था। ओम ज्ञानतिमिरान्दस्य ज्ञानञ्जनं अलकया चक्षुर्निमीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं వందే అహం శ్రీ గురు శ్రీయుత పదకమలం శ్రీగురున్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపాం సాగరజాతం సగణ రఘునాథ నితం తం సజీవం సాదయితం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీరాధా కృష్ణపాదాం సగణ లలిత శివిశాఖానితంశ హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధు జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత శ్రీరాధాకాంత నమస్తుతే తాంచన గౌరాంగీ శ్రీరాధే వృందావనేశ్వరీ వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరి ప్రియే వంశాకల్పతరువ్యశ్చ కృపా సింధువేవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః జై శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌరభక్త వృంద హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ. तो भागवत की जो प्रसंग चल रही है, भगवान श्री कृष्ण की जो लीला है, भगवान इस संसार में प्रकट होते हैं दो कारण के लिए. एक तो अपने भक्तों को आनंद देना, और दूसरी बात यह होती है जो अपने लीला के द्वारा बद्ध जीव को आकृष्ट करना भगवत धाम की ओर. भगवान भगवत गीता में बताते हैं ममेवांस जीव लोको, जीव की दुर्गति को देखकर भगवान इस संसार में बार बार प्रकट होते हैं और अपने पार्षदों के साथ लीला करके ऐसे एक आश्रय छोड़ जाते हैं जो बद्ध जीवों के लिए एक खुराक प्रदान करती है भगवत धाम पहुंचने का. तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर आज के प्रसंग में श्रील सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि भगवान अभी प्रकट होने वाले हैं, और भगवान के आविर्भाव तिथि को मनाने के लिए भगवान का ये आविर्भाव उत्सव, उत्सव तो नहीं है, महा महा उत्सव, भगवान का नित्य फेस्टिवल होती है. भगवान का नित्य, खाली आज जो चंद्र यात्रा है, आज जो उत्सव है, ऐसा बात नहीं है. भगवान का नित्य उत्सव, भगवान नित्य रोज उत्सव होती है. भगवान का दर्शन, भगवान का कीर्तन, भगवान का प्रसाद, भगवान का जो भी कुछ लो, वो एक प्रकार का उत्सव है. आनंद, जो चीज़ हमें आनंद प्रदान करती है, तो एक प्रकार का उत्सव है. तब भगवान का नित्य उत्सव होती रहती है. तब भगवान का ये आविर्भाव प्रकट उत्सव महा महोत्सव को दर्शन लेने के लिए सारे देवता लोग, ऐसे कि नारद असित देवल व्यास ब्रह्मा शिव, सारे देवता लोग यहाँ पर पधारे हुए हैं, पहुँच गए हैं भगवान का आविर्भाव देखने के लिए, भगवान का प्रकट को देखने के लिए. कहाँ पर? जेलखाना में. भगवान जेलखाना में जाके जन्म ले लेते हैं. ये भगवान का भक्त वत्सलता का एक परिचय है. भगवान का भक्त कहीं पर रहे, लंदन में रहे, अमेरिका में रहे, या सरक में रहे, या नरक में रहे, भगवान वहाँ पर पहुँचे, हाजिर हो जाते हैं. भगवान वैकुंठ छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन अपने भक्त को छोड़ नहीं सकते. भक्त जहाँ पर रहता है, भगवान वहाँ पर पहुँच जाते हैं. इसीलिए नारद जी भगवान एक बार बताएं कि जत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठन्ति. मैं वहीं पर अटक जाता हूँ जहाँ पर मेरा भक्त मेरा कीर्तन करता है. नारद, मेरा एड्रेस यही है, मेरा भक्त जहाँ पर है मैं वहीं पर हूँ. मैं वैकुंठ में या हिमालय में, हिमालय के गुंफे में योगी लोगों के हृदय में नहीं रहता. मेरा भक्त जहाँ पर होता है मैं वहीं पर होता हूँ. तो भक्तों, भगवान को पाने के लिए एक सस्ती रास्ता, एक बस सहज आसान तरीका क्या है ना, भक्तों के पास, भक्तों के सान्निध्य में रहना. भक्तों के सान्निध्य में, भक्तों के संस्पर्श में यदि हमें रहें, तब भगवान का दर्शन हो सकती है. नहीं तो हमें जन्म जन्मों से हमें भगवान को खोजते रहें, ढूंढते रहें, तब भगवान पकड़ में आने वाले नहीं है. भगवान को पकड़ना है, दर्शन या उनका कुछ समझना है, तो तरीका क्या है? भक्तों के माध्यम से. तो यहाँ पर सारे देवता लोग कंस के जेल खाना में, जहाँ पर अपने भक्तों को बंदी बना करके रखा था, तो ऐसे भक्तों के हृदय में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं. देवकी के हृदय में जो प्रकट होते हैं, तो देवकी जो तेज है, भगवान देवकी की जो दैवी गुण है, वो कई गुण, ऐसे तो भक्त लोग दैवी गुण के अधिकारी होते हैं, लेकिन जब भगवान वो भक्त के हृदय में प्रकट होते हैं, आविर्भाव होते हैं, तो धाम बन जाता है। और धाम और वो जो भक्तों की जो दैवी गुण है वो प्रकाशित होती है। दैवी गुण का जो लक्षण है, प्रत्येक जीव के भीतर दैवी आसुरी बुद्धि दो चीज है, लेकिन पता कब चलती है ना, जब उनके लक्षण के माध्यम से, उनका जो सिम्टम्स है, उनका लक्षण है, वो लक्षण के द्वारा पता चल जाती है उनके भीतर ये व्यक्ति दैवी स्वभाव के है या आसुरी स्वभाव के। तो देवकी के जो लक्षण है, तो लक्षण से पता चल जा रहा था कि उनके भीतर भगवान प्रकट हुए हैं, आविर्भाव हुए हैं। तो ये बातें को दर्शन लेने के लिए सारे देवता लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। और आज के प्रसंग के द्वारा श्रील सुखदेव गोस्वामी तीन बात बताते हैं, असुर कंस जैसे असुर, और देव भक्त जैसे देवकी और वसुदेव, और तीसरी भगवान श्री कृष्ण। तीनों की बात को यहाँ पर भगवान ना श्रील सुखदेव गोस्वामी बताते हैं। साधारण तो दिखी जाती है कि व्यक्ति जब दो स्थिति में होती है तो दो स्थिति में भगवान का खोज करती है। भगवान दो स्थिति में जब होता है तो दो स्थिति में वो भगवान को स्तुति करता है। वो दो स्थिति क्या है, दुख और सुख। जब भक्त दुख में होता तो भगवान को खोजता है, और जब सुख में भी होता वो भी भगवान को नहीं छोड़ता। लेकिन उससे हट करके और प्रकार के लोग होते हैं, वो केवल दुख में ही भगवान को स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन दुख जब सुधर जाती है तो फिर भगवान को भूल जाते हैं। वो कम बुद्धि वाले होते हैं, हाँ, ये संस्पृत मतलब इंद्रिय तृप्ति करने वाले व्यक्ति जो होते हैं, तो जब दुख आता है वो किसी का आश्रय में जाते हैं, लेकिन जब दुख जब सुधर जाता है, दुख जब उनके जीवन से चली जाती है, तो फिर आश्रय को भूल जाते हैं। हाँ, लेकिन ये देवता लोग यहाँ पर बड़े समझदार हैं। हाँ, वही जब देवता लोग दुख में हुए थे तो भगवान को स्तुति किए, प्रार्थना किए, प्रभु आप प्रकट हो जाइए, धरती पर असुरों की प्रादुर्भाव बढ़ गई है, अब असुरों के उत्पात उस समय शांत कीजिए, रक्षा कीजिए। हाँ, तब भगवान देवताओं की स्तुति सुनकर प्रकट हुए। और वही भगवान जब आने वाले हैं, प्रकट होने वाले हैं, तो वो स्थिति में भी जा करके देवता लोग वहाँ पर उनको स्तुति करते हैं। आज के ये प्रसंग के द्वारा श्री सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, तो भगवान को प्रसन्न करने का श्रीमद् भागवतम के द्वारा एक बहुत बड़ी प्रमुख शक्तिशाली मार्ग कहा गया है, ये है भगवान की स्तुति। तो प्रेयर्स मतलब भगवान के प्रति जो हमारा प्रार्थना है, ये प्रार्थना कब होती है ना, हृदय में जब भगवान के प्रति भाव उत्पन्न होती है, जब भाव होती है, अभाव में कुछ प्रार्थना क्या है भगवान के, तो भगवान कुछ नहीं होता है। यदि भगवान हृदय के भीतर भगवान के प्रति कुछ भाव नहीं है, तो क्या भगवान को व्यक्त करेगा, क्या भगवान को कहेगा। लेकिन भगवान के प्रति जब एक प्रकार का जीव के भीतर हृदय में भाव उत्पन्न होती है, ये भाव प्रार्थना के रूप में परिणत होती है। हमारे जो भाव है तो भाव प्रार्थना में बदल जाती है। तो यहाँ पर यही बात बताया जाता है, और श्रीमद् भागवतों में हमें कई जगह में देखा गया, कई कई भक्तों ने भगवान का दृष्टि को आकर्षित करने के लिए वो प्रेयर जो प्रार्थना है वो प्रार्थना की है। गजेंद्र की प्रार्थना, कुंती महारानी का, भीष्म पितामह, कई कई भक्तों की प्रार्थना श्रीमद् भागवतम के द्वारा रख करके भक्तों को एक प्रकार के मतलब वो प्रेरणा दिया जाता है कि यदि आप कमजोर हो, यदि आप भगवत भक्ति में दुर्बल हो, ये प्रार्थना एक ऐसे एक शक्तिशाली उपाय है जो भगवान को हृदय में धारण करने का एक हिम्मत प्रदान करती है, एक साहस प्रदान करती है। तो इसीलिए प्रत्येक भक्त को प्रार्थना करना, ऐसे कि प्रभुपाद जी भी जब भगवान श्री कृष्ण के सामने खड़े हो जाते थे तो प्रभुपाद जी भी प्रार्थना करते थे, और उनके शिष्य लोग कहते थे, ऐसे तो प्रभुपाद जी जब उनके बचपन से ही जब अमेरिका जा रहे थे, पानी के जहाज में बैठे हुए थे, तो कृष्ण को प्रार्थना कर रहे थे, और राधा रानी को प्रार्थना कर रहे थे। ऐसे कि उनका पिताजी गौरमेन देव भी हमेशा संतों को बुलाते थे और प्रार्थना करते थे, कृपा करके मेरे पुत्र को आशीर्वाद दीजिए, मेरा पुत्र राधा रानी के बहुत बड़े भक्त बन जाए। लेकिन माँ ने क्या प्रार्थना कर रही थी, नहीं नहीं मेरा पुत्र बिलात जाए, लंदन जाए और बारिश्टर बने। लेकिन गौरमेन देव जी संतों को प्रार्थना कर रहे थे, कि संतों के प्रार्थना में बस ही रहते हैं भगवान। संत के प्रार्थना इतने शक्तिशाली होती है क्योंकि शुद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं, उनका प्रार्थना बड़े नजदीक होती है भगवान का चरण के नजदीक होती है। इसलिए संतों की कहना और संतों की प्रार्थना भगवान ऐसे करते हैं जैसे माँ अपने बच्चे की, भले बच्चा कहाँ भी गया हो, स्कूल गया हो, कॉलेज गया हो, लेकिन हमेशा माँ की जो कान है अपने बच्चे की आवाज में रहती है, ऐसे वो ऐसे ही उनका भावना उनके भीतर बच्चों की भाव माँ के भीतर बच्चों की अपने बच्चों की बातें चलती रहती है, हमेशा बच्चों की जो आवाज है माँ के कान में गूंजती है। ठीक उसी प्रकार भगवान भले कहीं पे रहे लेकिन भगवान की जो कान है हमेशा अपेक्षा करती है कब मेरा भक्त मुझे कुछ कहेगा, मुझे कुछ बोलेगा, मुझे प्रार्थना करेगा, मुझे बताएगा, अपने दिल को खोलेगा। तो भगवान हमेशा अपने कान को दिखाते, ऐसे भक्तों की ओर दिखा के रहते हैं कब मुझे वो पुकारेगा। हाँ तो ये भी यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण वो चाहते थे भी, हाँ मेरे भक्त आए, मेरे देवता जो कौन है, भक्त हैं, हाँ यहाँ पर मेरे भक्त आए और मेरा ये नित्य उत्सव में योगदान करें। हाँ तो यहाँ पर जब व्यक्ति दुख में होता है तो भगवान को स्तुति करता है, और सुख में जब होता है खास करके भक्तों की बात कहा जाता है, वो दुख और सुख वो दोनों स्थिति में वो भगवान को प्रार्थना करता है। लेकिन जो अभक्त होते हैं वो दुख के समय प्रार्थना करते हैं और सुख के समय नहीं। हाँ और याद रखना चाहिए ये भौतिक जगत जो है, हाँ जेलखाना कितनी विपत्ति के स्थान है, खाली जो वसुदेव देवों की जैसे भक्तों को जेलखाना में जेलखाना जैसे विपत्ति के जगह में रहना पड़ा ये बात नहीं है। ये भौतिक संसार में हर कोई भक्तों को एक प्रकार का विपत्ति का विपद का चुनौती देना होती है। ये भौतिक जगत क्या है, एक प्रकार का जेल है, ये भौतिक जगत एक प्रकार का जेल है। तो जेल खाना में भक्तों लोग कब किस लिए आते हैं, किस लिए आते हैं ना, भगवान का जस को भगवान का महिमा को जेल खाना जैसे जागा में प्रचारित करके जेल खाना के कैदियों को भगवत धाम ले जाने के लिए। यदि भक्त ये भौतिक जगत रूपी जेल खाना में आता है तो भगवान के गुण प्रशंसा गा करके ये कैदियों को, यहाँ पर हर कोई कैदी है, बंधे हुए हैं, हर व्यक्ति वहां पर बंधन है, बंधन में है। हाँ तो ऐसे बंधन ऐसे कैदियों को छुटा लेने के लिए, हाँ भगवत धाम पहुंचाने के लिए तो वो आते हैं। हाँ हमें देखते हैं भक्त भक्त यदि भी जेल में जाता है, भक्तों को कभी कभी जेल में जाना पड़ता है, भक्तों को जेल में भी जाना पड़ता है। तो जेल में जा करके वो, हाँ तो जेल जैसे कैदियों जैसे नहीं रहते, उनका जो स्वभाव है भगवान की गुण गाना, वो जेल में कहीं पे रहे, जेल में रहे कहीं पे रहे, वो भगवान का गुण वो गाता रहता है। तो यहाँ पर ये भौतिक जगत जो है हमें याद रखना चाहिए ये विपत्तियों की विपत्ति से भरा हुआ है। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, चाहे आप कैसे भी स्थिति में रहो, किसी भी अवस्था में रहो, मेरे शरण में आ जाओ। और भगवान भगवद गीता क्या है, भगवान का दिल है, भगवान का हृदय है। हाँ भगवान अपने हृदय को किसको बताते हैं, कोई व्यक्ति अपने हृदय को किसको कहेगा, जिसको ज्यादा प्रेम करता है, नहीं तो जिस किसको नहीं बोलेगा। तो ये अपने हृदय को किसको कहे, भगवान अपने हृदय को किसको कहे, अर्जुन को कहे। हाँ तो ये भगवद गीता जो है भगवान का हृदय है। और मैं क्या बता रहा था, हाँ भगवान ये भगवद गीता में बताते हैं कि हर कोई जीव मेरे शरण में, वो चाहते हैं, भगवान चाहते हैं हर जीव मेरे शरण में आए। सर्वधर्म परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज। तो आप लोग सर्वधर्म मतलब क्या है, अपने परिवार के प्रति, अपने प्रति जो धर्म है वो धर्म को यदि कोई व्यक्ति भूल जाता है, यूं ही वो व्यक्ति ही वास्तविक भगवान का शरण में जाता है, वास्तविक वही व्यक्ति ही भगवान का शरण लेता है। अपने प्रति जो धर्म है, परिवार के प्रति जो धर्म है, और दूसरों के प्रति जो धर्म है, समाज के प्रति, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, सारे विश्व के प्रति जो धर्म है, वो सारे धर्म को छोड़कर भगवान क्या बताते हैं कि मेरे शरण में आओ। एक ही धर्म है वो धर्म है भगवान के शरण में जाना, यही ही वास्तविक धर्म है। और भगवान के शरण में जाए बिना, भगवान के शरण में जाए जो धर्म है वो धर्म को छोड़ करके बाकी जो धर्म है वो धर्म तथा कथित है। हाँ भगवान का शरण में जाने से और सारे धर्म अपने आप हो जाता है। भगवान के शरण में जाना यही ही सबसे बड़ी धर्म है। वो धर्म निभाने से, वो धर्म करने से बाकी जितने सारे धर्म है वो अपने आप हो ही जाता है। भगवान श्री कृष्ण जब ब्रज में थे और अपने बचपन की लीला कर रहे थे, बाल लीला कर रहे थे, तो इंद्र ने संकल्प ले लिया तो ये ब्रज को मैं डुबा दूंगा, भस्म कर दूंगा। तो इंद्र ने जब अपने प्रलयकालीन बारिश के द्वारा, वर्षा के द्वारा चाह रहा था मैं सारे ब्रज को डुबाऊं, तो भगवान क्या किए, दिखा दिए इंद्र को, दिखा दिए कि आप ही शरण नहीं हो, आप ही आश्रय नहीं हो। और ये बात दिखती है ब्रज में, जब जब विपत्ति आती है ब्रजवासियों का एक सहज गुण है, बचाओ कृष्ण बचाओ, हाँ कृष्ण बचाओ। ब्रज के ऊपर किस जाए, हो बालक हो, वृद्ध हो, गाय हो, बछड़े हो, कुछ भी हो, जब भी जब जब दिखा जाती दिख जाती है ब्रज के ऊपर विपत्ति, तो कृष्ण बचाओ। हालांकि कृष्ण छोटे से बालक है, छोटे से बालक अपने रक्षा नहीं कर सकता, दूसरे को क्या प्रोटेक्शन, क्या रक्षा देगा। लेकिन ब्रजवासियों के बहुत बड़ी आत्मबल, आत्मविश्वास था कि जब जब ब्रज के ऊपर विपत्ति आती थी तो कृष्ण बचाओ, हाँ तो कृष्ण ही उनको संभालते थे, कृष्ण उनको बचाते थे। और इंद्र का प्रकोप जब ब्रज के ऊपर हुआ तो सारे ब्रजवासियों को लेकर भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन के नीचे चले गए, और वहां पर जाकर के अनंत से इसको आदेश दे दिया, जाओ ये इंद्र को मुझे सबक सिखाना है, ज्ञान देना है। तो अनंत से इसको आदेश दे दिए, ये सारे जो गोवर्धन है वो चारों तरफ अपने आप ऐसे बांध बांध दो, एक बूंद पानी जैसे गोवर्धन के अंदर ना आए। और भगवान का आदेश लेते हुए अनंत से गोवर्धन के चारों तरफ बांध बांध दिए, और सुदर्शन को आदेश दिए, जाओ अनंत अभी शेष अभी नीचे काम कर, मेरे आदेश काम कर रहे हैं, और आप गोवर्धन के ऊपर जाओ। और प्रलयकालीन ताप के ताप, प्रलयकालीन अग्नि के द्वारा आप इंद्र का ये बरसात पानी को पीते जाओ। और भगवान का आदेश लेते हुए सुदर्शन गोवर्धन के ऊपर गए, और अपने शरीर से अपने तेज के द्वारा वो बरसा हुआ जो पानी है वो पानी को पीते गए। तब इंद्र को पता चला भले वो बालक है, हाँ यही आश्रय की योग्य है, लेकिन कम बुद्धि वाले व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का आश्रय को नहीं समझते हैं। कम बुद्धि वाले, ये बात भी भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर के हस्तिनापुर का राज सिंहासन पांडव को दे करके द्वारका के ओर चल पड़ रहे थे, ठीक उसी समय कुंती महारानी का जो स्तुति है भगवान को रोक लिया। प्रार्थना में, भक्तों की प्रार्थना में इतने बल होती है, हाँ भगवान को रोक लेती है। भगवान चल पड़ दिए थे, भगवान चल दिए थे, रथ में आकर बैठ गए थे। गंतुम कृतमृति ब्रह्मन द्वारकम रथम आस्थित, द्वारका जाने के लिए निर्णय ले लिए थे। गंतुम कृतमृति ब्रह्मन, हे ब्राह्मण, वहां पर श्रील सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, हाँ श्रील सुखदेव गोस्वामी परिकृत, हाँ तो गंतुम मतलब निर्णय ले लिए थे, द्वारका की ओर चल दिए थे भगवान श्री कृष्ण, आस्थित रथ में जाकर के बैठ गए थे। द्वारका जाने के लिए रथ में जाकर के बैठ गए थे, लेकिन भगवान रथ में बैठे बैठे क्या देखें, कुंती महारानी का स्तुति और रथ से उतार लिया। उतरा के जो स्तुति प्रार्थना द्वारका को द्वारका जान में जाने के लिए वो रोक दिया। उपले थे अभिधावंती में उतरा भय बिहुलम, भगवान श्री कृष्ण रथ में बैठे हुए देखे, जो उनके जो भक्त है उतरा उपले में देखे अभिराम बहुत जोर से दौड़ करके आ रही है, और कैसे ना भय बिहुला। भगवान श्री कृष्ण रथ में जब बैठे हुए थे द्वारका और चलने के लिए, तो देखे उनके भक्त उतरा बड़े भय के साथ उनके तरह दौड़ के आ रही है। कि उसी प्रकार भक्तों की यहाँ पर एक प्रकार का चेतावनी दिया जा रहा है, क्योंकि उतरा उस समय विधवा थी, ये कौन सा चक्रव्यूह के द्वारा अभिमन्यु मारा गया था। जिस प्रकार सेनापति के बिना सारे सेना नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार पति के बिना पत्नी भी नष्ट हो जाती है। और भगवान शास्त्र के ये अभी बताया जाता है, भगवान ये विश्व के पति है, भगवान को विश्वपति कहा जाता है। तो उत्तरा ने समझ गई थी, मेरा जो वास्तविक पति है ये भगवान श्री कृष्ण है। पति के संरक्षण में रहना, पति के सुरक्षा में रहना, ये ही वास्तविक धर्म है। यदि कोई स्त्री सारे कार्य को निभा रही है, वो दान दे रही है, जप कर रही है, भगवान का मंदिर आ रही है, भगवान के कोष जो भी कुछ कर रही है, लेकिन अपने पति का यदि सेवा नहीं करता है, तो सारे निष्फल है। ये चाणक्य नीति है, चाणक्य पंडित अपने नीति शास्त्र में ये नीति है। तो ये पति का पतिव्रता धर्म के द्वारा भगवान को आयत्त किया जा सकता है, भगवान की जो कृपा है वो आकर्षित किया जा सकता है। जिस प्रकार शिष्य के लिए गुरु भगवान जैसे हैं, इसी प्रकार नारी के लिए अपने पति भी भगवान जी से। लेकिन कलयुग है, थोड़ा उल्ट पल्ट हो रही है, लेकिन ऐसे अपने मन में रखना चाहिए। पति के भीतर परमात्मा का रूप को दर्शन करते हुए अपने उनको नेग्लेक्ट अवहेला नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर उत्तरा ने समझ गई थी कि भगवान श्री कृष्ण विश्व की पति है, वही है पति, मतलब जो पति मतलब मास्टर प्रभु, पति शब्द का अर्थ है प्रभु, जो दूसरों को सुरक्षा दे वही प्रभु, वही उनको ही प्रभु कहा जाता है। प्रभु शब्द का अर्थ जो दूसरों को अपने सुरक्षा दे उनको ही प्रभु कहते हैं। तो उत्तरा ने समझ गई, भले हालांकि पांडव लोग वहीं पर खड़े हुए थे, लेकिन उत्तरा ने भगवान श्री कृष्ण के शरण में गए। भगवान न उत्तरा ने भगवान को ही सुरक्षा मांगे। पाई पाई महायोगी देव देव जगतपते नान्यंत्वत्, हे प्रभु में और कोई सुरक्षा की जगह मुझे दिखती नहीं है। इस प्रकार का समय है, ये परिस्थिति से मैं अपने को बचाऊं, ये धर्म संकट में इस प्रकार के विपत्तिमय समय में न अन्य कोई नहीं दिखती है। त्वत मतलब आपके व्यतीत, और न अन्य और कोई मुझे दिखती नहीं है। यत्र मृत्यु परस्परम, क्योंकि ये भौतिक जगत है, ये भौतिक जगत है। हाँ, यहाँ पर हर जीव के हर व्यक्ति के भीतर ईर्ष्या भाव चलती रहती है। हाँ, क्योंकि जड़ चेतन की मिश्रण भौतिक जगत है। आध्यात्मिक जगत जो एक वस्तु है, आध्यात्मिक जगत जो है चेतन वस्तु है, लेकिन भौतिक जगत जो है वो दो वस्तु है, जड़ और चेतन। जड़ चेतन के होने के कारण यहाँ पर ईर्ष्या होती है। तो उत्तरा ने यही कह रही है, इस प्रकार ईर्ष्यालु जगत में मैं किसकी शरण मांगू, आप ही न अन्यंगत्वत, आपके बिना और कोई मुझे दिखते नहीं है। न अन्यंगत्वत यत्र मृत्यु परस्परम, इस प्रकार कहते हुए वो भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ करके आ रही है। ये हर जीव का ये भी कर्तव्य है, जब हमें विपत्ति में होते हैं, जब किसी हालत में होते हैं, किसी दशा में होते हैं, निर्णय लेने का हमारे हाथ में हमारे बस में नहीं होती है, तो वह समय भगवान की ओर दौड़ना चाहिए। उत्तरा एक भक्त है, तो भक्तों ने सिखा रहे हैं कि हमें दौड़ किसके तरह चलना है, किसके तरह आना है, ना भगवान श्री कृष्ण का, श्री कृष्ण का और दौड़ना है। हाँ, अभिद्रवती माम ईस, और प्रार्थना करते हुए उत्तरा ने दौड़ करके आ रही है, ये बात नहीं है। आते ही उन्होंने भगवान को प्रार्थना की। हाँ, अभिद्रवती माम, हे प्रभु देखो 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 देखो, अभिद्रवती मेरे तरफ ये विपत्ति आ रही है, आप मुझे ही बचा सकते हो। हाँ, अभिद्रवती माम, माम मतलब मेरे तरफ, मेरे की और मेरे और अभिद्रवती आ रही है इस, हे भगवान देखिए आप, अभिद्रवती माम इस शरद तत्त अयोसव विभु, क्योंकि वह समय सारे कौरव मारे गए थे और इतने दुख हो रहा था अस्वस्थमा को, और ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था पांडवों के शेष को नाश करने के लिए। पांडव का शेष कौन थे, उत्तरा के गर्भ में जो बच्चा था वो पांडवों की लास्ट थे, तो उनको बचाने के लिए, उनको नाश करने के लिए अस्वस्थमा ने अपने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था। अभी द्रवती माम इस सरस तप्त अयस विभु, ये तपाय हुआ ये लहो बाण मेरे ओर आ रही है। हाँ, तो मुझे ये जो ब्रह्मास्त्र से आप ही मुझे बचा सकते हो, आप जो चाहते हो मुझे, मेरा नाश हो जाए इसमें कोई दुख नहीं है। कामं दहतु मांगना तो मामे गर्भन निपात्यतम, उत्तरा ने प्रार्थना कर रही, ये जो मेरी तरफ ये जो ब्रह्मास्त्र आ रही है हो सके मुझे जला दे, इसमें कोई दुख नहीं है। कामं दहतु, यदि आपका इच्छा है, कामं इच्छा, आप जी चाहते हो मैं ब्रह्मास्त्र की तरह भस्म हो जाऊं, इसमें मुझे दुख नहीं है, लेकिन दुख ये है बातों का, मेरा प्रार्थना इसलिए आपको कि मेरे गर्भ के भीतर जो बच्चा है, जो संतान है, उनको आप रक्षा कीजिए। कामं दहतु मां नाथ, हे स्वामी हे प्रभु, हाँ मां में गर्भ निपात, मेरे गर्भ को निपात धंस मत कीजिए। जब इस प्रकार को उत्तरा ने प्रार्थना कर रही थी और भगवान देख रहे थे रथ के ऊपर बैठ करके, उपधार्य वचस्तस्या, भगवान जब सुनते हैं बड़े धीरज के साथ, जब कोई निर्णय लेना होता है ना बड़े सोच विचार करना चाहिए, तो भगवान ने उपधार्य वचस्तस्या बड़े धैर्य के साथ उत्तरा का कहना सुन रहे थे। उपधार्य वचस्तस्या भगवान भक्त वत्सल, अपांडवं इदं कर्तुं द्रोणे अस्त्र अबुध्यत, भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि उपधार्य वचस्तस्या उत्तरा क्या कह रही है वो समझ गए। अपांडवम, पांडव वंश को अपांडवम करने के लिए ब्रह्मास्त्र आ रही है। अपांडवम इदम कर्तुम, करने कर्तुम मतलब करने के लिए द्रोणे अस्त्र अबुद्ध्यत, द्रोणों का द्रोणे द्रोणे मतलब द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, द्रोणे पुत्र द्रोणे अस्त्र अबुद्ध्यत। भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा द्रोणे वो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है। व्यसनंग व्यख्यम, ये जो बात देखें भगवान ने देखें कि द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया उत्तरा की ओर। और ये ब्रह्मास्त्र में इतनी शक्ति होती है, पहले समय में मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित करके जो अस्त्र प्रयोग किया जाता था ना, ये मंत्र जिसके जिसको उद्देश्य करके प्रयोग किया जाता था वही व्यक्ति को ही नष्ट करता था, सबको नहीं। यहाँ पर जैसे पाकिस्तान आके बम ब्लास्ट करें, बम फेंके तो यहाँ पर सबको हरिबोल हो जाएगा, भले यहाँ पे कोई व्यक्ति उनका दुश्मन है, लेकिन एक व्यक्ति को मारने के लिए यदि वो बम फेंके तो वहां पर एक वो एक ही व्यक्ति उनका टारगेट नहीं मरेगा, वो सबको सब नाश हो जाएगा। ये आधुनिक अस्त्र है, आणविक अस्त्र है, अस्त्र है। लेकिन पहले समय में वैदिक शास्त्र के द्वारा जो आणविक अस्त्र प्रयोग किया जाता था, पहले समय इसने खिचोड़े इसे गलत ढंग से, वर्तमान जिस पर गलत ढंग से सब प्रयोग किया जाता है, पहले समय में इस पर गलत ढंग से यूज नहीं किया जाता, व्यवहार नहीं किया जाता था। पहले समय मंत्रों के द्वारा, मंत्रों के द्वारा धर्म युद्ध होता था, अभी सब तो अधर्म है, पहले समय धर्म युद्ध होता था, इसलिए मंत्र प्रयोग कर उच्चारण करके वो अस्त्र को प्रयोग किया जाता था। जब द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, वो सब किसी को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र नहीं आ रहा था, केवल एक ही एक व्यक्ति को, वो क्या था, फिर एक गर्भस्थ शिशु को। देखिए ऐसे शक्ति हुआ करता था, वो माँ का कुछ नष्ट नहीं करने वाली थी, वो ब्रह्मास्त्र माँ का कुछ नष्ट, उत्तरा का कुछ नष्ट नहीं करने वाली थी, उत्तरा के गर्भ में गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। तो वो समय जो वैदिक मंत्रों के द्वारा अस्त्र छोड़ा जाता था, तो जो व्यक्ति को लक्ष्य करके अस्त्र छोड़ा जाता था वही व्यक्ति को ही मारता था, और किसी को नहीं, और किसी को नहीं। इतने सारे व्यक्तियों के भीतर जो व्यक्ति को लक्ष्य करके अस्त्र छोड़ा जाता था वही व्यक्ति को ही मारता था, सबको नहीं। तो ये मैं बताया क्या, व्यसनंग व्यख्यम, जब भगवान श्री कृष्ण देखे कि उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए द्रोणा ब्रह्मास्त्र आ रही है, व्यसनंग भगवान देख लिए, व्यसनंग मतलब देख लिए, मेरे भक्तों के ऊपर संकट आ रही है, व्यख्य देख लिए, व्यसनंग विख्य तत् तेसाम अन्य अन्य व्यसया आत्मनम। और पांडव लोग कैसे थे, ऐकांतिक नष्टिक भक्त थे, एकांतिक भक्त थे, अपने एकांतिक भक्तों के ऊपर जब विपत्ति आ रही थी तो भगवान ने देख लिए, तो क्या किया भगवान ने, उसके दूसरे कार्य क्या किए भगवान ने, सुदर्शन सुअस्त्रेण स्वानंग रक्षा व्यधात विभु। भगवान अपने भक्तों को रक्षा देने के लिए उनके पीछे जो मुहूर्त में भगवान के शरण स्वीकार कर लेते हैं, भगवान अपने भक्तों को रक्षा देने के लिए सुदर्शन चक्र को अपॉइंटमेंट दे देते हैं, जाओ मेरे भक्तों की देखभाल करो, मेरे भक्तों की रक्षा करो। सुदर्शन वो भक्त के पीछे है, इसलिए भक्तों को शुद्ध भक्तों को डर नहीं होता, भक्तों को डर नहीं होता है, जो भगवान का भक्ति करते हैं तो उनको कुछ ऐसा डर नहीं होता है, क्योंकि जानते हैं भगवान की रक्षा मेरे पीछे है, भगवान की रक्षा मेरे चारों तरफ घूम रही है, सुदर्शन मेरे चारों, सुदर्शन भक्तों को चारों तरफ रक्षा कर रहा है। तो सुदर्शन ने स्वअस्त्र अपने निजी अस्त्र को भगवान पकड़ लिए, ले लिए, सुदर्शन ने स्वअस्त्र स्वानंग रक्षा व्यधात विभु, भगवान अपने निजी भक्तों को रक्षा देने के लिए सुदर्शन को पकड़ लिया, ले लिए, अंतस्थ और लेकर के कहां गए भगवान, अपने सुदर्शन को लेकर के कहां गए ना, अंतस्थ, अंतस्थ सर्वभूतानां उत्तरा के गर्भ के भीतर में चले गए, योग माया समावृत, जो उत्तरा के गर्भ में जाकर के अपने योग शक्ति के द्वारा, तो अपने योग शक्ति भगवान रहे हैं गर्भ में तो है ऐसे भगवान, लेकिन अपने योगिक शक्ति के द्वारा भगवान उत्तरा के जो गर्भ है परीक्षित महाराज, वो परीक्षित महाराज को प्रोटेक्ट कर लिए अपने योग शक्ति के द्वारा। जब योग शक्ति के द्वारा भगवान श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए, तो ब्रह्म यदि हो मतलब ये ब्रह्मास्त्र का कोई प्रतिकार नहीं है, अमोघ है उनका कोई मतलब निदान नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है, तो ऐसे कोई क्रिया कोई प्रतिकार नहीं है, ऐसे ब्रह्मास्त्र वैष्णव तेज आसाद्य समसम्यक, जैसे भगवान के सामने गया वो शांत हो गया। जैसे वह ब्रह्मास्त्र भगवान उत्तरा के गर्भ में गया हाँ, तो भगवान का शक्ति के सामने वो शांत बन गया। तो यहां पर हमें एक प्रकार का चेतावनी दिया जा रही है हाँ, भक्तों को किसी कैसे भी प्रकार और भगवान के साथ जोड़े रहना चाहिए भगवान को, क्योंकि हमें भगवान का भूल गए हैं। भगवान को याद करने के लिए प्रहलाद महाराज नौ प्रकार के अंग बताते हैं, श्रवण कीर्तन स्मरण जो आगे आगे जो विधि है। तो किसी भी प्रकार है हमें भगवान को याद करना चाहिए। जब भगवान श्री कृष्ण भगवान नरसिंह देव हिरण्यकश्यप का वध कर डाला और अपने भक्त प्रहलाद सताए जाने के कारण से भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा था और भगवान अपने भक्तों की ऊपर अत्याचार को अत्याचार के कारण से वो गरज रहे थे और भगवान नरसिंह देव के गरजना से स्वर्ग मर्त्य पाताल वो एकदम कांप रही थी। और वो समय वहां पर सारे देवता लोग खड़े हुए थे, ब्रह्मा जी खड़े थे, शिव जी लक्ष्मी जी सारे खड़े हुए थे, किसी का हिम्मत नहीं हो रहा था आगे बढ़ जा करके कुछ दो बात कहें कुछ बोले, किसी का साहस नहीं हो रहा था। आखिर में जब देखे ब्रह्मा जी देखे उनका ये सृष्टि नाश होने वाली है भगवान के प्रकोप से क्रोध से, तो वहां पर ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को बोले बस आगे बढ़ो, तुम्हारे पिताजी के वजह से प्रभु आज इतने क्रोध में है। हाँ, जब इस प्रकार ब्रह्मा जी कहे प्रहलाद महाराज को तो प्रहलाद महाराज गए सीधा दंडवत हो गए, भगवान नरसिंह देव के सामने गए दंडवत कर लिए। जैसे प्रहलाद महाराज भगवान नरसिंह देव के सामने जाकर दंडवत कर लिए तो भगवान नरसिंह देव शांत हो गए। और जो सारे भक्तों को अभय देने वाले जो उनके अभय हस्त कमल हाँ प्रहलाद के सर के ऊपर आ गया, जो सारे भक्तों को अभय देने वाले हैं तो वो हस्त प्रहलाद महाराज के ऊपर आ गया। जब आया तो प्रहलाद ने स्तुति किया प्रार्थना किया हाँ, ब्रह्मा जी ने प्रहलाद महाराज को बताया आपके स्तुति के द्वारा आपके प्रार्थना के द्वारा भगवान का जो क्रोध है वो शांत हो सकती है, आप भगवान को आप शांत कीजिए अपने स्तुति के अपने वाणी के द्वारा। तो वहां पर प्रहलाद महाराज अपने अयोग्यता प्रकट करते हैं। ये वैष्णव का एक बहुत बड़ी गुण है, यदि वो योग्य है हाँ। और यहाँ पर भी प्रभुपाद जी बताते हैं वैष्णव अपने वैष्णवता को लेकर के झूठी गर्व नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी बताते हैं कि वैष्णव अपने वैष्णव योग्यता को लेकर के वृथा अहंकार गर्व नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर वैष्णव चाहे कितने भी बड़े हो जाए तो हमेशा अपने को बहुत, क्योंकि भक्ति में जितने 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 ऊपर ऊपर उठते हैं ना उतने उतने अपने को छोटे मानते हैं। नहीं, भक्ति से जितने जितने हमें नीचे भक्ति से और दूर जो जाते हैं ना अपने को और बड़े मानते हैं। ये भक्ति और अभक्ति में एक प्रकार का अंतर है। तो हालांकि प्रहलाद महाराज कितने बड़े वैष्णव है कितने बड़े भक्त है लेकिन उन्होंने भगवान नरसिंह देव को प्रार्थना करते हैं हाँ, भगवान को स्तुति करते हैं। तो असुर परिवार में जन्म होने के नाते तो ये कैसे संभव हो सकता है कि मेरा स्तुति के द्वारा भगवान प्रसन्न हो जाए, जहां पर इतने बड़े बड़े देवता लोग खड़े हुए हैं उपस्थित हैं, लक्ष्मी जी उपस्थित हैं, कितने सारे मुनि लोग यहाँ पर उपस्थित हैं हाँ, अपने उत्तम उत्तम वाणी के द्वारा भगवान को प्रसन्न कर ही नहीं पा रहे हैं। जो लोग ये सारे देवता लोग सत्वगुण के हैं सारे योग्य हैं, ऐसे ऐसे लोग जब भगवान को शांत नहीं कर पा रहे हैं तो मेरे विषय में क्या कहा जाए, मैं तो कितने अयोग्य हूं। और यही बात को कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में बताते हैं, जगाई माधाई होते मुई से पापिष्ट पुरुष रे कीट होते मुई से लगिष्ट। वैष्णव जगाई माधाई से भी और पापी मानता है, और मल में जो रहने वाला कीड़ा है तो कीड़ा से अपने को और छोटा मानता है। पुरुष रे कीट होते मुई से लगिष्ट, पुरुष मनुष्य के जो मल है और मल में कीड़े रहते हैं, पुरुष रे कीट है थे मुही से लगिष्ट। प्रहलाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि वैष्णव ऐसा अपने को मानता है हाँ। हमारे भीतर कितने भी योग्यता हो, हमें हमारा जप हमारा तप हमारा साधना हमारा पूजा कोई व्यक्ति का शारीरिक बल, स्वास्थ्य, सौंदर्य, ज्ञान, ये कुछ काम का नहीं है। ये कोई भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए उपाय नहीं है। एकमात्र उपाय है भक्ति। और यही बात गजेंद्र ने किया था, इसीलिए वो भगवान को प्रसन्न कर लिया। भगवत भक्ति हीनस्य जपशास्त्र और क्या है ये, भगवत भक्ति हीनस्य जपशास्त्र जप स्तुति ने, ऐसे कुछ है। हाँ, भगवत भक्ति के बिना हमारा जाप, हमारा तप, हाँ ये कैसे है ना, मंडनम लोकरंजनम, ये केवल एक सो पीस बन जाएगा। ये बस दिखाने बात होती है। हमारे हृदय में भक्ति नहीं है, ये कैसे है लोकरंजन। हाँ मैं भक्त हूँ, मैं भी भक्त हूँ, मैं भी ब्रह्मचारी हूँ, मैं भी कंठी हूँ, गले में है, ये सब लुक दिखा हो जाएगा। यदि भक्ति नहीं है, ये मंडनम लोकरंजनम, लोग देखेंगे हाँ ये भक्त है, ये इतना ही हो जाएगा। हाँ तो यहाँ पर ये आधुनिक ना सर, ये भौतिक जगत के जो हर व्यक्ति जो भय में है, अभय में होने के लिए, अभय होने के लिए प्रभुपाद जी बताते हैं कृष्ण भावनामृत। कृष्ण भावनामृत ऐसे एक उपाय है जो हमें निर्भय अभय करा सकता है। हाँ इसीलिए भक्त जहां जाते हैं यही गाते हैं, ये तो आमी तो नरसिंह, मैं जहां जहां जाऊं है नरसिंह भगवान, मैं जहां जहां जाऊं आपको ही चिंतन करूं। किसी भी दशा में रहें, किसी भी कैसे भी रहें, हम भगवान को स्मरण करना चाहिए। जगन्नाथपुरी में आप लोग जो लोग जगन्नाथपुरी गए हैं तो वो लोगों को पता होगा, जगन्नाथ जी के जो पंडे लोग है, ये पंडों में से जगन्नाथ जी के एक पंडे थे, उनका नाम था अर्जुन मिश्रा करके पंडे थे। तो ये अर्जुन मिश्रा एक ब्राह्मण थे, अबर गरीब थे, लेकिन उनका एक गुण था, वो हमेशा रोज भगवद गीता पाठ करते थे, अध्ययन करते थे। और भगवद गीता अध्ययन करने में उनका इतना रुचि थी, उनका ये रुचि को देख करके वहां के लोग उनको गीता पंडा कह करके बुलाते थे। भगवद गीता के प्रति श्रद्धा देख करके वहां के लोग उनको गीता पंडा नाम दे दिए थे। और एक भगवद गीता हमेशा अध्ययन करते थे। और एक बार ऐसा हुआ, दरिद्र ब्राह्मण थे और जगन्नाथपुरी में एक बार 7 दिन तक लगातार बारिश होने लगी। और ये उनका औकात ऐसा था, एक दिन घर के बाहर नहीं जाएगा तो उनका चूल्हा नहीं जलता था। तो 7 दिन लगातार जब बारिश हुआ तो उनके घर में खाने के लिए और कुछ नहीं बचा, नहीं रहा। तो उनके पत्नी थी, बच्चे लोग थे, तो ये गीता पंडा सोचने लगा, अच्छा हुआ लगातार बारिश हो रहा है, मुझे समय मिल रही है और गीता पाठ करने का। तो वो घर के लोग उपवास में है, भूखे हैं, सब चीड़ रहे हैं उनके ऊपर, वो कुछ नहीं देख रहे हैं। तो वो क्या सोच रहे हैं, अच्छा हुआ बारिश हो रही है, घर में बैठे बैठे मैं गीता और अध्ययन करूं। तो वो सोच करके गीता पढ़ रहे थे, ठीक उसी समय उनका पत्नी आई, अरे क्या आप गीता लगा रखे हो, क्या गीता पढ़ रहे हो, देखो घर में इतने कुटुंब है, सारे भूख में देखो कितने विकल हो रहे हैं, तो आप बाहर जाइए, कुछ व्यवस्था कीजिए, सारे लोग इतने कष्ट में है। लेकिन उनको ये आवाज सुन नहीं रहा था, पहुंच नहीं रहा था उनका कान में, वो गीता पढ़ रहे थे। और गीता का एक श्लोक को गीता पंडा जी अपने पत्नी को दिखाए, देखो वो श्लोक था, भगवान ने कहे कि अन्यन चिंतनंतो मां जे जना परिपास्यते, और क्या है, तेसाम नित्य अभियुक्तानाम योगक्षेम बहाम्यहम। भगवान भगवद्गीता में बताते हैं, मैं मेरा भक्तों की आवश्यकता को प्रत्यक्ष रूप में वहन करता हूं। जब ये गीता पंडा जी अपने पत्नी को दिखाए, देखो भगवान ने क्या कहा, अब क्यों चिंतित हो, अब क्यों इतने व्यस्त हो परिवार के पोषण के नाम पर। हाँ कि भक्त थे, उनका विश्वास था भगवान के ऊपर, तो देखा है, देखो भगवान ने क्या कहा। भगवान ने कहते हैं कि वो अपने भक्तों का दायित्व अपने स्वयं प्रत्यक्ष रूप में पालन वहन करते हैं। जब दिखाया गीता पंडा ने अपने पत्नी को, तो सीधा लिया वो भगवान के वो उपदेश के ऊपर खरोच डाला, मोड़ तोड़ दिया। तो जब मोड़ तोड़ दिया, गीता पंडा को बड़ा दुख हुआ। मोड़ तोड़ के गीता पंडा का पत्नी जाकर के अपने बच्चे को लेकर के एक अलग कमरे में सो गया। जो सोया हुआ था, और गीता पंडा भी जब देखा अपने पत्नी का भगवद गीता के उपदेश के प्रति इस प्रकार का व्यवहार, वो थोड़ा दुखी होकर के वो भी अलग जगह में जाके सो गया। तो सारे घर परिवार जब सोए हुए थे, तो दरवाजा में एक प्रकार का आवाज आया। जब आवाज आया तो गीता पंडा की पत्नी जो थी वो
जाकर के दरवाजा खोल दी। जो खोल दी वो देखते रह गए, उनके जीवन में ऐसे आकर्षक बालक कभी देखे ही नहीं थे। एक श्याम वर्ण के थे और एक दूध वर्ण के थे, उज्जवल उज्जवल वर्ण के थे। वो दोनों बालक और छोटे छोटे थे और अपने कंधे में भारी भारी दो चीज को भारी चीजों को रखे हुए थे। और इतने छोटे इतने आकर्षक सुंदर बालक, हाँ, जब गीता पंडा की पत्नी देखी कि इतने सुंदर बालक, वो देखते ही रह गए ना। और श्याम वर्ण के जो बालक थे वो कहने लगे गीता पंडा को कि देखो गीता पंडा का जो दोस्त है, गीता पंडा का जो मित्र है, तो आपके लिए कुछ सामग्री भेजे हुए हैं, तो कृपया आप ये सबको रख लीजिए। तो गीता पंडा की पत्नी, हाँ, वो कटोरी से भगवान श्री कृष्ण के कंधे से भार को उतार के नीचे रखे, रख करके सारे सामान लेकर के अपने घर में भरने लगे। जब तक उनका कमरा उनका घर भर नहीं जाता तब तक ये जो 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 क्या है जो बोझ है, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, हाँ, थैला भी जो भी है, वो जो कंधे में लेकर के आए थे ये टुकड़ी टुकड़ी, हाँ, वो टुकड़ी से और वो निकलती रहती है। हाँ, और जब उनका घर भर गया तब जाके वो टुकड़ी से निकलना शांत हो गया, बंद हो गया। तो घर भर गया और गीता पंडित की पत्नी आकर के ये दोनों बालक को बोलने लगी, आप थोड़े रुक जाइए, आप लोगों के लिए थोड़ा सा कुछ मैं बना देती हूँ, आप लेकर के जाओगे। लेकिन श्याम बन के जो बालक थे तो कहने लगे, हाँ, मेरा तो जीभ कट गई है, मैं तो कुछ भी खा नहीं सकता, तो मैं जा रहा हूँ। तो बोल करके कृष्ण बलराम, हाँ, जो बालक बन करके आए थे चले गए। तो जाने के बाद गीता पंडा, हाँ, उठा उनका पत्नी सारे बातें को कह दिया कि देखो दो आपके मित्रों ने दो बालक को भेजे थे और देखो हमारा घर पूरा एकदम भर गया है। हाँ, तो गीता पंडा सोचने लगी, अरे कौन मित्र क्या है, तो समझ नहीं पाए। तो जब देखा है तो समझ गए ये और कोई नहीं है, स्वयं जगन्नाथ जी, क्योंकि ये गीता पंडा जो थे जगन्नाथ जी के बड़े भक्त थे। तो समझ गए ये और कोई नहीं, जगन्नाथ जी की कृपा है, तो उनकी कृपा से आज ये घर भर गया है। तो समझ गए, हाँ, तो समझ करके वो अपने पत्नी को पूछे कि आप वो दोनों बालक को कुछ खिलाए, कुछ रोके। तो गीता पंडा की पत्नी बोले, मैं उनको रोका, लेकिन श्याम वर्ण का जो बालक था ना वो कहा कि मेरा जीभ कट गई है, मैं तो कुछ खा नहीं सकता, पी नहीं सकता। तो ऐसे कह करके दोनों बालक चले गए। तो गीता पंडा जी समझ गए, तो और कोई नहीं है, ये भगवान स्वयं आए थे और आपने जो ये गीता का उपदेश जो खरोच डाला ना, ये खरोच, क्योंकि भगवान अपने उपदेश किस में कहेंगे, अपने जीवा के द्वारा। और भगवान के उपदेश और भगवान का जीवा में कोई अंतर नहीं है। जब उनका उपदेश को खुरचा जाता है, आघात किया जाता है, वो आघात कहां पर पहुंचती है, ना भगवान के जीवा में। हाँ, जब उनका मार जब उनके जीवा में पहुंचा, क्योंकि भगवान अपने भक्तों की मार को भी, हाँ, वो दिखाते, देखो आपका ये पुरस्कार है, देन है। तो भगवान दिखा ना, गीता पंडा ने कहा आप उनके उपदेश को जब नेग्लेक्ट किए, मारे, तो वो मार जाके कहाँ पे पहुंचा, उन्हें जीवा में। हाँ, तो अपने भूल का प्रायश्चित करने के लिए पति पत्नी दोनों जगन्नाथ मंदिर की ओर चल पड़े। और जगन्नाथ मंदिर में जब जाके पहुंचे, देखे जगन्नाथ जी के लाल लाल होठों में तीन दाग है, तीन कटा हुआ निशान है। जब देखे जगन्नाथ जी के लाल लाल होठों में तीन निशान है, कटा हुआ निशान है, तो दोनों भक्त रोने लगे और जगन्नाथ जी को माफी मांगे। हाँ, तो कहने का अर्थ ये है, किसी भी प्रकार हमारे श्रवण प्रक्रिया, कीर्तन, प्रार्थना, किसी भी प्रकार हमें भगवान के भक्ति में, यदि भगवान के साथ हमें जोड़े रहे, तो चाहे वो कितने बड़े भौतिक संसार का विपत्ति आए, तो ये वसुदेव देवकी भले वो जेल खाने जैसे विपत्तिमय स्थान में रहे थे, लेकिन भगवान आएंगे आ रहे हैं करके वो ऐसे विपत्तिमय स्थान में रह करके भी हर्षित थे, सुखी थे। उसी प्रकार भक्त भौतिक जगत में खतरा के स्थान पर है, लेकिन यदि किसी भी प्रकार प्रक्रिया के द्वारा भगवान के साथ अपने संबंध बना लेता है, भगवान के साथ ये संबंध रूपी जो उपाय है इतने शक्तिशाली होता है कि ये उपाय बन जाने के बाद वो कोई बातों को डरता ही नहीं है। कि भगवान के साथ जीव का जो संबंध है, जैसे बच्चा अपने पिताजी के साथ संबंध होने के नाते वो कोई बात को डरता नहीं है, भले हालांकि छोटा सा बच्चा है, कोई बात को डरता नहीं है, ठीक उसी प्रकार बद्ध जीव के साथ भगवान के साथ भगवान के साथ जो के संबंध है, ये संबंध स्थापित हो जाने के बाद वो कोई बात को डरता नहीं है, वो डरता नहीं, अभय निडर हो जाता है। तो वो प्रक्रिया के द्वारा हमें भगवान के साथ हमें हमारा संबंध स्थापित करना है, करना चाहिए। कुंती महारानी भी यही बात को बताती है कि हे प्रभु मेरा मन और इधर कुधर ना जाए, ये संसार में इधर किधर ना जाए। जिस प्रकार गंगा समुद्र में मिलने के लिए दौड़ती है, ठीक उसी प्रकार मेरा मन जो है आपका चरण कमल के ओर चले। मेरा मन तोई में अन्य विषय और कोई विषय के और मेरा मति, कुंती महारानी प्राप्त स्तुति करती है भगवान के चरण कमल कमल की, तोई में न अन्य विषय, मेरा जो मन है आपको छोड़ करके और कोई विषय में न, संसार के और इधर किधर भट न जाए। हाँ, गंगा जिस प्रकार समुद्र में मिलने के लिए चलती है, उसी प्रकार मेरा मन भी आपको आपके चरण की ओर चले। और यही बात भी पितामह भीष्म बताते हैं, सदैव देव भगवान प्रति कथाम। पितामह भीष्म जब बाणों के बिछोने के ऊपर लेटे हुए थे और बाणों के बिछोने के ऊपर सोए सोए और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल की स्तुति कर रहे थे, सदैव देव भगवान प्रति, आप रुक जाइए भगवान, पितामह भीष्म प्रार्थना कर रहे हैं, सदैव देव भगवान, ये भगवान प्रतीक खत्म, आप अपेक्षा कीजिए। कलेबरम यावत इदम हिनोमि अहम, कलेबर ये शरीर, कलेबरम यावत जब तक ये कलेबर को मैं त्याग नहीं देता, छोड़ नहीं देता हूँ, हिनोमि अहम मतलब मैं छोड़ नहीं देता हूँ। प्रसन्न हस अरुण लोचन उल्लसत मुख अम्बुज भगवान चतुर्भुज ध्यान पथ चतुर्भुज, कि पितामह भीष्म का इष्ट देव कौन थे, ना चतुर्भुज नारायण भगवान, पितामह भीष्म के जो आराध्य देव थे वो चतुर्भुज नारायण थे। तो पितामह भीष्म स्तुति कर रहे हैं, प्रसन्न हस आपका जो प्रसन्न हस अरुण लोचन उदयकालीनी, जो सूर्य का आपका लोचन है, आंखें हैं उदयकालीन, जो सूर्य का जो आभा है, जो कांति है, जो सुंदरता है, यही सुंदरता आप आंखों में है। पितामह भीष्म ऐसे कवित्व की स्फुरण होती है, पितामह भीष्म के भीतर कवित्व की स्फुरण होती है। वो अपने स्तुति के द्वारा कहते हैं, प्रसन्न हस अरुण लोचन उल्लसत मुख अम्बुज, आपका मुख कैसे है, अम्बुज के समान है। अम्बुज मतलब अम्बु से जो उत्पन्न हुआ है, अम्बुज, अम्बु मतलब जल, जल से कौन जन्म लेती है, अंबुज मतलब पद्म कमल। आपका आपका मुख कैसे है, ना अंबुज, हाँ कमल, कमल जैसे हैं। तो ऐसे मुख अंबुज ध्यान पथ, मेरे ध्यान में रहें, यही स्तुति में कर रहा हूं, मेरे आपका ऐसे सुंदर रूप मेरे ध्यान में रहें। कैसे, ना चतुर्भुज चार भुजे वाले नारायण मेरे ध्यान में रहे, कब तक, ना जब तक ये शरीर को मैं छोड़ नहीं देता हूं। हिनोमि अहम, अहम मतलब मैं जब तक ये शरीर को छोड़ नहीं देता हूं तब तक मेरे ध्यान पथ में हे प्रभु आप अपेक्षा कीजिए। समय तो नहीं है। तो इसी प्रकार भक्तों के हृदय में भगवान के चरण कमल को पाने के लिए लोभ होना चाहिए। जब लोभ होती है, ये लोभ प्रार्थना में प्रकट होती है। और हर भक्त को भगवान के जब दर्शन लेते हैं, हर भक्त जब दर्शन लेता है तो कुछ ना कुछ बोलना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। और यही प्रार्थना को आज के दिन में ये नित्य उत्सव एक महामहोत्सव महान भक्त माधवेंद्र पुरीपाद जी आज हमें कहे हैं, किस प्रकार प्रार्थना के द्वारा, उत्सव के द्वारा, आज एक उत्सव दिन है, ये उत्सव के द्वारा हम भगवान को हमें आकृष्ट कर पाए। और आज और एक पवित्र तिथि है, आज जैसे पवित्र तिथि में जो भी कार्य करेंगे वो अक्षय बन जाएगा। हमारा भक्ति, हमारा सेवा, हमारा जो भी कुछ है भगवान के लिए, भौतिक संसार में तो कोई चीज अक्षय नहीं होती है, क्योंकि भौतिक संसार अक्षय नहीं है, अक्षय है। लेकिन भगवान के प्रति हमारा जो आज नाम जप, इसलिए आज ज्यादा जप करना चाहिए और भक्ति बढ़े, मन लगा करके भगवान का भक्ति लगा करना चाहिए। कुछ भी यदि सेवा करना है, भगवान का बड़े ही सेवा करना चाहिए, क्योंकि आज अक्षय तृतीया है, आज की तिथि अक्षय, जो भी कार्य करेंगे वो अक्षय हो जाएगा, क्षय नहीं होगा। ऐसे तो भगवान का भक्ति अक्षय है, लेकिन और कई गुणा में वो बढ़ जाएगा। आज के पवित्र तिथि में, और आज के दिन में जगन्नाथ जी के रथ आज जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथ धाम में जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी के लिए तीन रथ तैयार होती है, आज से शुरू होती है। भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी का जो रथ निर्माण कार्य है आज से शुरू होती है। तो आज भी ऐसे हमारे हृदय रूपी रथ को बनाएं, निर्माण करें। हमारा हृदय एक रथ है, ये हृदय रूपी रथ का निर्माण आज जैसे पवित्र तिथि से शुरू करना चाहिए। हाँ, तो ऐसे ये रथ को बनाना चाहिए कि ये रथ में आकर के स्वयं जगन्नाथ जी आकर के बैठ जाए। हाँ, तो इसी प्रकार भावना रख करके यदि हम भगवान के चरण में आज हम स्तुति करेंगे तो भगवान हमारा स्तुति को स्वीकार करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब कलिजुग में सबसे बड़ी स्तुति यही है, कलिजुग में सबसे बड़ी स्तुति ये हरे कृष्ण महामंत्र है, उनको कभी नहीं छोड़ना है, कभी नहीं भूलना है। हरे कृष्ण श्रील प्रभुपाद की जय। जोर प्रेमानंद। समय तो नहीं है, किसी का प्रश्न तो नहीं हो सकता है, तो माइक्रोफोन वो भी जा रहा है भगवान के चरण के।
बंद करो ना इसको।